राम राम हरे 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 कृष्णा। सो सात दिन तक हम भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य के विषय में वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भगवान राम की लीला का कथा का श्रवण वर्णन कर रहे थे। आज वामन द्वादशी है, भगवान वामन देव का प्रकट्य दिवस है। भगवान वामन देव वैसे वामन वैसे छोटे को कहते हैं, वामन देव, उपेंद्र उसका दूसरा नाम है, इंद्र का छोटा भाई, और त्रिविक्रम भी कहते हैं। तीन चरणों में उन्होंने सब कुछ नाप लिया था बलि महाराज। ये आठवें स्कंद भागवत में इस कथा का वर्णन है। भगवान जब लेना चाहें तो सब कुछ ले लेते हैं, और जब देना चाहें तो अपने आप को भी दे देते हैं। तो बलि महाराज बहुत बड़े असुरों के राजा थे, लेकिन उन्होंने वचन कर दिया था एक बार वामन देव को तीन पग जमीन देने का, तीन कदम जमीन देने का। तो वो अपने वचन पे सच्चे रहे, और दो कदम में भगवान वामन देव ने सब कुछ नाप लिया। ये पृथ्वी नाप ली, और उनके तपस्या से, उनके यज्ञ से, उनके पुण्य कर्मों से अर्जित किए हुए ऊपर के लोक भी नाप लिए, और भगवान के चरण सीधे पांव के चरण का अंगूठा तो ऊपर भौतिक जगत के जो आवरण है, कवरिंग है, उसको छेदन करके और विरज नदी के जल को नीचे गंगा के रूप में लाने वाला का कारण बन गया। फिर वामन देव वापस छोटे वट्टू ब्राह्मण बन के और कहने लगे कि अब तीसरा पांव कहाँ रखूं। बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर के ऊपर रखिए, मेरा मैं इस संसार के स्वामी भी मैं था, मैंने अपने ही यज्ञ आदि से, मैंने अपने पुण्य कर्मों से ऊपर के लोक अर्जित किए थे, वो सब आपने ले लिए, लेकिन दोनों को करने वाला मैं तो हूँ। तो बलि महाराज ने अपना सब कुछ सर्वस्व भगवान को अर्पण किया, अपना अहंकार मैं अपना भी अर्पण कर दिया। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर के ऊपर रखा। इससे हमारे भाषा में बलिदान शब्द आ गया। बलिदान का मतलब सब कुछ अर्पण कर रहे, और नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन, सब कुछ अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दे, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे, उसको कहते हैं बलिदान, और बलि महाराज उसका प्रतीक है। और उसके बाद भगवान ने अपने आप को बलि महाराज को दे दिया। जब बलि महाराज ने सब कुछ भगवान तो को दिया, तो भगवान ने भी अपने आप को बलि महाराज को दे दिया। बलि महाराज को सूतल लोक दिया, जो स्वर्ग से भी ज्यादा वैभवशाली है, और बलि महाराज आने वाले मनवंतर के इंद्र बनेंगे, और भगवान साक्षात बलि महाराज के दरवाजे के ऊपर बलि महाराज को दर्शन और उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए दरबान के रूप में खड़े हो गए। तो भगवान जब लेते हैं तो फिर देते भी छप्पर फाड़ के हैं। तो बलि महाराज का आज आविर्भाव तिथि है, और आज बहुत पुण्य दिन है। हम भगवद गीता के 14वें अध्याय में कुछ आज गुणों का वर्णन करना, ये एक प्रसंग आया है, इसलिए बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में लोग एक तो भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव का सबका व्यवहार अलग अलग है, समाज का विचार अलग अलग है, और फिर इतने सारे पंथ मत संसार में हैं, उसका आखिर कारण क्या है। इन सब चीजों का एकमात्र कारण है प्रकृति के तीन गुण। तो प्रकृति के तीन गुणों का नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये प्रकृति क्या है, पहले ये समझना चाहिए। अब आप सिर्फ अपने आप को देख लीजिए कि हम मानव जो हैं वो दो चीज़ों के बने हुए हैं। हम दो चीज़ों का ऐसा मिश्रण है, ऐसी मिलावट है, ऐसा दोनों का जुड़न है, जिनको समझना बुद्धिमानी है, लेकिन उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो दो किस चीज़ों के हम बने हुए हैं? एक हमारा शरीर है जो बना हुआ है प्रकृति से, मटेरियल नेचर से। उसके अंदर जो सामान लगे हुए हैं, जिन चीज़ों से ये बना हुआ है, वो सब चीज़ें भौतिक हैं, वो सब चीज़ें मटेरियल हैं, वो सब चीज़ें कुदरत के द्वारा दी गई हैं। जैसे हम विशेष रूप से कहते हैं हमारा शरीर पांच भूतों का बना हुआ है। पांच भूत का मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पांच चीज़ों का ये शरीर बना हुआ है। सबके शरीर, जिसके भी शरीर ढूंढ लो, राजा महाराजा से लेके देवता से लेके और एक चींटी का शरीर भी देख लो, कुत्ते बिल्ले का भी शरीर देख लो, उन सब के अंदर मसाला यही है, ये पांच भूत है इनका बना हुआ है। इसलिए ये प्रकृति जो है इसने शरीर बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो हम रह रहे हैं, हमारी जो पहचान है, उसको कहते हैं आत्मा। तो आत्मा का और शरीर का आपस में मिलन हुआ है, आपस में ये दोनों मिक्स हुए हैं। तो ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। तो नेचर कहते हैं स्वभाव को, मटेरियल नेचर मतलब भौतिक प्रकृति का स्वभाव। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा तो है भगवान का अंश, आत्मा है भगवान का अंश। तो आत्मा का स्वभाव है जैसे भगवान का स्वभाव है। तो भगवान के स्वभाव को कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान सदा रहने वाला है, उनका न आद है न अंत है। ऐसे आत्मा भी सदा रहने वाला है, न उसका आद है न अंत है। चित्त का मतलब सब कुछ जानने वाला, ज्ञान का भंडार। तो आत्मा में अनंत ज्ञान है क्योंकि भगवान का अंश है। और तीसरा है आनंद, भगवान आनंद कंद है और आत्मा भी आनंद का ही स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप और स्वभाव है सच्चिदानंद, क्योंकि भगवान का स्वभाव और स्वरूप है सच्चिदानंद। अब आप देख लीजिए, हम सब लोग दुनिया में सदा रहने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ये है, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हमेशा हमारी जिज्ञासा रहती है, ये क्या कह रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये किधर है। तो ये जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, इच्छा है, ये भी आत्मा के कारण है। और सभी संसार में कहते हैं कि हम सुखी रहें, हमको सुख चाहिए, तो ये भी आत्मा के कारण है। अब ये तो स्वभाव हुआ आत्मा का। तो प्रकृति जिसने हमको शरीर दिया, उसका स्वभाव क्या है? प्रकृति का स्वभाव बनता है तीन गुणों से। हमारी प्रकृति का नेचर, मटेरियल नेचर मतलब प्रकृति का स्वभाव, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव है। ये तीन गुणों का प्रभाव, अगर तीन गुण आपस में मिक्स करोगे तो तीन और तीन को तीन से गुणा करोगे, नौ हो जाएंगे, और नौ को नौ से मिक्स करोगे, 81 हो जाएंगे। ऐसे इतने मिक्स करते जाओ इन गुणों के मिक्सचर से इतने स्वभाव। इसलिए हमारी भाषा में कहते हैं खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। हर एक व्यक्ति का विचार अलग है, व्यवहार अलग है, नेचर अलग है। तो तीन मुख्य प्रकृति के गुण हैं जो जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और कौन से गुण का कहां प्रभाव है, गुण है क्या, ये गुण प्रकृति के। जैसे अब हम आपसे ये पूछें मन क्या है, आप मन दिखा तो नहीं सकते, मन बहुत सूक्ष्म है, मन भी प्रकृति का बना हुआ है। बुद्धि क्या है, अगर आपसे पूछें तो बुद्धि को भी दिखाना मुश्किल है। अहंकार क्या है, मन बुद्धि अहंकार ये भी प्रकृति है, ये भी भौतिक चीजें हैं, ये कोई आत्मा का अंग नहीं है, लेकिन ये भी हमारा इस शरीर का अंग है। ये तीनों चीजों का छोटा शरीर बना हुआ है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जो भौतिक शरीर है, ये कुछ समय चलता है फिर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, वो आत्मा के साथ सदा रहता है और उसके अंदर तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। अब कोई पूछे तीनों गुणों का प्रभाव किसके ऊपर होता है, तो तीनों गुणों का प्रभाव होता है हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर और हमारे अहंकार के ऊपर, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर इनका प्रभाव होता है। ये एक प्रकार के सिद्धांत हैं और ये अपने आप में इनका अस्तित्व है, लेकिन इतना सूक्ष्म अस्तित्व है कि इनका प्रभाव सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ता है। अब जीव आत्मा जब शरीर को धारण करता है, और क्यों करता है, कोई पूछे कि जीव आत्मा शरीर को धारण क्यों करता है, अपने कर्मों के कारण। कर्मों के कारण जीव आत्मा को फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। भाई फल कौन भोगेगा, शरीर। तो शरीर क्यों मिलता है, कर्मों के फल के कारण। तो जब शरीर मिलता है तो तीन गुण कैसे आते हैं, ये एक श्लोक पढ़ते हैं गीता का। सत्वम रजस्तमः इति ही गुणः प्रकृति संभवः, सतो रजो और तमो, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निबद्धनन्ति, निबद्धनन्ति का मतलब बांध देते हैं। बांध इसलिए इसको बोलते हैं कि गुण का एक अर्थ है रस्सी। जैसे कोई आदमी रस्सी से किसी को बांध दे तो वो उसी एरिया में, एक लस है, आप 10 फुट रस्सी में किसी को बांध दो तो 10 फुट तक आगे जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। कि जैसे घोड़े को पांव में बांध देते हैं तो उतना दूर जाएगा जितना लंबा रस्सी है। तो ये गुण जो हमारे को ऐसे बांध देते हैं कि हमारे को एक सीमा के अंदर सीमित कर देते हैं, ये रस्सी है। निबधन्ति महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को संबोधन है। अर्जुन का संबोधन का मतलब है तुम बड़ी भुजाओं वाले हो, वीर हो, क्षत्रिय हो, लेकिन ये प्रकृति के गुण बड़े बड़े वीरों को भी बांध देते हैं, उनके ऊपर भी इनका प्रभाव सदा रहता है। देहे देही नाम, देहे का मतलब शरीरधारी, और देही नाम जो इसका मालिक है। ये गुण किसके हैं, बोले शरीर के हैं, और शरीर का मालिक कौन है, अव्ययम अविनाशी है, आत्मा है शरीर का मालिक, वो है अविनाशी, ये उसके गुण नहीं है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये शरीर के साथ हमारे को मिलते हैं जब हमको शरीर मिलता है, और इनसे हमारा बनता है स्वभाव। और अब कहते हैं कि सतोगुण कैसा होता है, अब ये छठा श्लोक पढ़ते हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, इन तीनों गुणों में सतोगुण जो है निर्मल, मल कहते हैं कचरे को, मलमल कहते हैं गंदगी को, निर कहते हैं नहीं, इसका मतलब शुद्ध है, सतोगुण शुद्ध है, इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये निर्मल है सत। हाँ, तत्र इन तीनों में से सत्व निर्मलत्वात्, सतोगुण बहुत निर्मल है। प्रकाशकम, प्रकाशकम का मतलब प्रकाश, जैसे आज हम रात को 9:09 के लिए दिए जला के प्रकाश करने वाले हैं, इसका मतलब अंधकार को मिटाने वाले हैं। तो प्रकाश की परिभाषा है ज्ञान, अंधकार की परिभाषा है अज्ञान। अज्ञान अंधकार को कहते हैं और प्रकाश ज्ञान को कहते हैं। तो सतोगुण में व्यक्ति की इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की होती है, वो अंधकार में नहीं रहना चाहता है, वो बुद्धिमान हो के कुछ समझना चाहता है और मुश्किल से निकलना चाहता है। अनामयम, अनामयम का मतलब, आमय कहते हैं रोग को, बीमारी को, अनामय कहते हैं रोग से मुक्ति। तो सतोगुण का व्यक्ति, क्योंकि उसका आहार व्यवहार शुद्ध होता है, वो पाप रहित होता है, इसलिए वो रोग रहित भी होता है। अनामयम का शब्द अर्थ है उसके अंदर कोई पाप की प्रवृत्ति नहीं होती है, पाप के कर्म करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। सुख संगे न बंधनात, और वो सुखी होता है, उसकी मानसिकता हमेशा अपने आप को सुखी मानता है, उसको दुख नहीं लगता है। और ज्ञान संगे न चानग, अनग कहते हैं निष्पाप को, अर्जुन आप निष्पाप हो, ज्ञान संगे न बंध, अपने आप को ज्ञानी मानता है। अब इतना आपको बता दें कि जब हमारे गीता में और वेद में भी वर्ण आश्रम विभाजन लिखा हुआ है कि चार प्रकार के स्वभाव के अनुसार अनुस्वार ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और क्षुद्र होता है, तो ये चारों का विभाजन कैसे किया जाता है, तीनों गुणों के आधार के ऊपर किया जाता है। जो ब्राह्मण है, जो शिक्षा देने वाला बुद्धिमान है, वो सतोगुण में है। सतोगुण का व्यक्ति व्यक्ति ब्राह्मण माना जाता है, उसका स्वभाव ब्राह्मण का होता है। रजोगुण का व्यक्ति राजा, राज करना चाहता है, शासक बनना चाहता है, सबको संभालना चाहता है, उसके अंदर वीरता होती है, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो वो क्षत्रिय रजोगुण से होता है। रजो और तमोगुण दोनों का प्रभाव मिक्स हो जाए ज्यादा, रजो और तमो दोनों मिक्स हैं, तो वो वैश्य की वृत्ति वाला व्यक्ति हो जाता है, और पूर्ण रूप से तमोगुण में है तो शूद्र वृत्ति का व्यक्ति होता है। ये तीन गुणों से चार वर्णों का विभाजन होता है। अब तीन गुणों का एक सामान्य उदाहरण दे के आपको समझाएं। जैसे आज एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति पूरे विश्व के ऊपर आई हुई है, महामारी कोरोना की चारों ओर फैली हुई है मानो, तो इसके अंदर एक प्रकार के लोग हैं जो इसकी कोई परवाह नहीं, जाओ क्या होगा, इधर जाओ उधर जाओ, खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो, ये हैं तमोगुणी लोग। ये तमोगुण के लोग हैं जिनको कोई विचार नहीं है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, लाभ किस में है हानि किस में है, अपना लाभ क्या है दूसरे का हानि कैसे कर रहे हैं कुछ देख नहीं रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं मजा जो चाहे वो कर रहे हैं। ये तमोगुण के प्रकृति के लोग होते हैं। रजोगुण के प्रकृति के भागना चाहते हैं कि इससे भाग कैसे जाएं, दूसरा गिरे तो गिरे लेकिन मैं इससे आगे भाग जाऊं। जैसे कोई लोग जाएं बाजार के अंदर सभी मैं खरीद कर लूं और किसी को कुछ ना मिले, मेरे घर में ही सब आ जाए, ये रजोगुण की प्रवृत्ति। और सतोगुण वाले वो विचार करते हैं इस रोग से लोगों को बचाएं कैसे, इसके लिए दवाई निकालने के लिए क्या करना चाहिए, भूखे लोगों को रोटी पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो इस वक्त तीन प्रकार के लोग आप चारों ओर आपके देखने में आएंगे। एक तो लोग हैं जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं पागलों की तरह, किसी की न सुन रहे हैं न मान रहे हैं। एक लोग हैं जो केवल अपने ही हित के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों का कुछ हो न हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, और वो लोग रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण है। और एक सात्विक लोग हैं जो दूसरों की भलाई के काम में लगे हुए हैं। ऐसे अचानक कहीं भगदड़ मच जाए, चाहे कहीं माल में भगदड़ मच जाए, अचानक कोई कहे बम है, तो उसमें से कुछ लोग तो उधर ही पागल की तरह खड़े हो जाते हैं, चलो चिल्लाने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग दौड़ के दरवाजे की तरफ भाग निकलते हैं, दूसरों को गिरा के उसके ऊपर के भाग के अपने आप को भगाना चाहते हैं। और तीसरे वो बुद्धिमानी से सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है, यहाँ से निकालें कैसे। जो पहले हैं चिल्लाते हैं ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं पागल की तरह चीखते रहते हैं, वो तमोगुणी लोग हैं, वो स्वयं तो परेशान है दूसरों को भी परेशान करते हैं। जो भागा दौड़ी करके दूसरों को गिराते हैं, दूसरे गिरे दूसरे मरे लेकिन हम निकल जाएं, उसमें कितने लोगों को मार के भाग जाते हैं, ये रजोगुणी लोग हैं। ये ट्रेनों के अंदर आपको विशेष रूप से लोग दिखते हैं कि दूसरा चढ़े न चढ़े लेकिन दूसरे को धक्का दे के मैं चढ़ जाऊँ, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। रजोगुण की प्रवृत्ति केवल मेरा ही लाभ किस में है वही देखता है, दूसरे का क्या है उसको देखने में नहीं आता है। सतोगुण का व्यक्ति जो है वो स्वयं सुखी होता है, उसके पास ज्ञान होता है, उसके को निर्णय करने का विचार आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सतोगुण की प्रवृत्ति क्या है, निर्मल है, पाप रहित तो उसका जीवन है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ब्राह्मण बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े दार्शनिक सातोगुण के होते हैं, इनको बड़ा सुख मिलता है। और इसमें एक विचार आता है कि मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हूं, इसके लिए वो भी बंध जाते हैं सतोगुण में। एक उदाहरण देते हैं, ये तीनों गुण कैसे हैं, ये तीनों गुण हथकड़ी है जिसने हमको इस दुनिया में बांध के रखा है। सतोगुण सोने की हथकड़ी है, अब सोने की हथकड़ी है तो बंधे हुए लेकिन है सोने की, अच्छी लग रही है, तो इसको सुख और ज्ञान का भाव आ जाता है सतोगुण में जो उनको बांध के रख देता है। मुक्त वो भी नहीं है लेकिन वो पाप रहित है, वो दूसरों के हित के कार्य में लगा हुआ। जैसे वैज्ञानिक है दार्शनिक है, इस वक्त दुनिया को सुख संकट से बचाने के काम में लगे हुए हैं, अपने जीवन को जोखिम में डालकर संकट में डालकर दूसरों के सुख के लिए काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनके अंदर सतोगुण का प्रभाव है, तब ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। और प्रकाशकम का मतलब उनका ज्ञान, उनके अंदर जानकारी है, वो जानना चाहते हैं और वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सत्वगुण में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है कि मैं समझ लूँ कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक जिसके अंदर है वो सत्वगुण की वृत्ति वाला है। सत्वगुण की वृत्ति वाले में विवेक होता है और जिसके अंदर विवेक होता है वो ही सही और गलत को समझ सकता है। बुद्धिमान सतोगुणी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अनामयम रोग और पाप के कारण दुख से रहित होते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म करने से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, पाप कर्म की तरफ उनकी प्रवृत्ति जाती नहीं है, उनका स्वभाव पाप कर्म की तरफ मुड़ता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रकाशमय ज्ञानमय रास्ते को समझ लिया है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। सुंग सुख संगे न बंधनात्, सुख के संग में बंध जाते हैं, वो उनका जीवन सुखमय होता है, क्योंकि वो दुख का कारण पाप है उससे बचे हुए हैं, इसलिए सुखमय है। और ज्ञान, और उनके अंदर ज्ञान है, दूसरों से अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए वो उससे बंध जाते हैं। तो ये बार बार बंधन तो है। अब तमोगुण रजोगुण को थोड़ा सुन लेते हैं। रजोरागात्मक रजोरातात्मम विधि, विधि का मतलब जानो अर्जुन, जानो रागोगुण कैसा है। रागात्मिक, रागात्मिक राग का मतलब अटैचमेंट, राग का मतलब किसी से बहुत आसक्ति, आत्मिक का मतलब होता है आसक्ति ही उसका जीवन है, वो आसक्ति का ही बना हुआ है। आत्मिक का मतलब जैसे जैसे आदमी कोई नमक ही डाल दे दाल में तो कहते हैं अरे ये दाल है कि नमक के, नमक बना के आयो। कोई चीनी डाल दे शरबत में तो कहेंगे ये तो भाई चीनी है, चीनी ही चीनी है, इसमें क्या कर दिया है। ऐसे राग ही राग का जो बना हुआ है, मैंने आसक्ति ही आसक्ति का बना हुआ है। किस में आसक्ति है? पुरुष की स्त्री में आसक्ति, स्त्री की पुरुष में आसक्ति, ये सारा संसार इस आसक्ति के ऊपर चल रहा है। और घर है, फिर घर है, घर में आसक्ति, फिर परिवार में आसक्ति। अब इन दोनों चीज़ों में आसक्ति है तो फिर क्या करना चाहिए? लोग मुझे पहचाने इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ काम करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए, तो काम में लिप्त होगा, उसको काम करना पड़ेगा। रजोगुण वाला कैसा है? रागात्मिक, उसका जीवन ही आसक्त है, हम सब चीजों में आसक्ति उसकी है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब जिसमें आसक्ति है उस आसक्ति की पूरी करने के लिए उसकी इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद घर लिया, आप गाड़ी लेनी है, गाड़ी के बाद ये गाड़ी छोड़ो तो कोई से ऊपर वाली गाड़ी लेनी है, इससे दूसरे मॉडल वाली गाड़ी लेनी है, इसके दूसरे बड़ा बंगला लेना है। ये जो तृष्णा का मतलब उसकी इच्छाएं और आगे बढ़ती है। संग बंधनात्, इच्छाओं में ऐसा बंधा होता है, इच्छाओं के जाल में ऐसा बंधा होता है कि इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, किसके लिए? जिसमें आसक्ति है उसके लिए। और फिर तन निबधांति कौन्तेया कर्म संगे न देही नाम, हे कुंती पुत्र, वो बंध जाता है। किस में बंध जाता है? आसक्ति में बंध जाता है। और इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कमाना पड़ेगा भाई, घर बनाना है तो कमाना पड़ेगा, गाड़ी लेनी है तो कमाना पड़ेगा, समाज में प्रतिष्ठित होना है तो कमाना पड़ेगा। तो फिर वो एक चक्कर में चल जाता है, सुबह से शाम तक आसक्ति को पूरा करने के लिए उसी के अंदर रहता है। पूरा विश्व विशेष रूप से रजोगुण से प्रभावित है, पूरा विश्व रजोगुण के प्रभाव से इतना प्रभावित है, और इस रजोगुण के कारण से लोग दुनिया में भागा दौड़ी में लगे हुए, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए। मेरा काम होना चाहिए, दूसरे का हो या ना हो, लेकिन मेरा तो होना ही चाहिए। तो ये रजोगुण जो है, ये इसकी पहचान है, इसमें काम करने में ऐसे लगा हुआ होता है, समाज में मुझे सम्मान मिलना चाहिए, देश में मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं सुख संपत्ति से बस संपत्ति इकट्ठी करके परिवार में रह जाऊं, ये सब चीजों में ऐसा हो, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब ना कर्म संगे ना, कर्म संगे ना मतलब काम में बंधा हुआ है। यहां लिखा ऐसा है, ये पूरा भौतिक जगत, ये पूरा भौतिक जगत प्राय, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ना, वो भी रजोगुण के अधिपति है, रजोगुण विस्तार चाहता है, रजोगुण का एक प्रवृत्ति है विस्तार, बढ़ाना, हर चीज जहां बढ़ाने की इच्छा है वहां रजोगुण का प्रभाव है, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। और रजोगुण में फिर काम करना पड़ेगा, विराम नहीं मिलेगा, रजोगुण में विराम नहीं है, केवल कर्म संगे न बंधनात्, काम में बांध देता है पूरा संसार रजोगुण में। ये जो आधुनिक हमारा सभ्यता है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें रजोगुण के बढ़ने को ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है आजकल। पहले सतोगुण के व्यक्ति को बड़ा सम्मान दिया जाता था, पहले राजा महाराजा जो है वो घर में साधु महात्मा उनके गुरु हुआ करते थे, वो ब्राह्मण स्वभाव के सतोगुण के होते थे, तो उनको ज्यादा आदर दिया जाता था। अब कहीं किसी राजा के पास सतोगुण का व्यक्ति मार्गदर्शन करने वाला नहीं रह गया। अब ये लोग जो है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया रजोगुण के प्रभाव से, प्रभुपाद जी अमेरिका में जब उतरे तो कहा कि लोग कहते हैं ये बड़ा प्रगतिशाली देश है, यहाँ बहुत सुख सुविधा है, लेकिन ये तो सब लोग रजोगुण के अंदर भागा दौड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास में ही लगे हुए हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को तो जानते नहीं है। तो रजोगुण जो ऐसा है, पूरा समाज इस वक्त रजोगुण के प्रभाव में ऐसा बंधा हुआ है, बस केवल इसी एक विचार के कारण आगे बढ़ने का, जब सतोगुण वाले भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो भी सुख और ज्ञान में बंध जाते हैं, तो रजोगुण वाले विचारों का क्या कहना, वो तो बंधे हुए ही हैं, पहले से आसक्ति में बंधे हुए हैं, फिर कर्म के बंधे बंधे हुए, सुबह से शाम तक उसको मजदूरी करनी है, उस काम में बंधे हुए हैं, क्योंकि फल के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए जीवन में अब ये दो दो गुण हो गए, तीसरे गुण को भी देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तमस्त्वाज्ञान जम विधि, अब जान लो कि जो तीसरा तमोगुण है ये अज्ञान, ये अज्ञान है। सतोगुण ज्ञान है और तमोगुण अज्ञान है, अंधकार है। तमोगुण अंधकार है, मोहनम, और इसके अंदर मोह होता है। मोह का मतलब भ्रम में पड़ा रहता है, आगे दूसरे श्लोकों में आएगा कि सतोगुण वाले का सुख अलग है और तमोगुण वाले का सुख अलग है। तमोगुण वाला नशा करके पड़ा रहेगा, समझेगा मैं बहुत सुखी हूं, नशे करके पड़ा रहने को बड़ा अपने आप को सुखी मानता है, ये मोह में फंसा हुआ है, मोह में ऐसा फंसा हुआ है, कहता मैं सुखी हूं। कि जो चीज पहले आपको दुखी लगे, जिसका अंत में फल सुख हो, वो समझो कि सतोगुण का काम है। जो पहले बड़ा अच्छा लगे, जिससे अंत बहुत दुखदाई हो, वो रजोगुण। जैसे नशा करना है, पहले तो नशा करना है, कोई बुरा काम करना है, पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, तो ये रजोगुण का प्रभाव है। पहले देखो बैठना है, रोज उठना है, सुबह सवेरे स्नान करना है, भगवान का नाम जपना है, भैया अमृत वेले पे जाना है, तो ये पहले तो तकलीफ वाला है, लेकिन अंत में इसका सुख बहुत ज्यादा है, इसका परिणाम अच्छा है, तो ये सतोगुण का है। जिसका आरंभ भी दुखदाई और अंत भी दुखदाई, वो तमोगुण का है। आरंभ भी दुखदाई और अंत भी दुखदाई, तो सुख सतोगुण का कैसा होता है, दान सतोगुण का कैसा होता है, भोजन सतोगुण का कैसा होता है, विचार सतो, ये सब हर एक का विभाजन करके शास्त्रों के अंदर सिखाया गया है। और इन सिखाने के पीछे एक बात सिखाई गई है कि बुद्धिमान मानव को नीचे के दो गुण, तमो और रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में कम से कम आना चाहिए, तो मानव दिखेगा, तो जरा मानव जैसा लगेगा। सतोगुण में आने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, तब उसको कुछ जानकारी हो गई तो भगवान को जानने के लिए उसकी जिज्ञासा पैदा होगी। लेकिन तमो और रजोगुण वाला इस तरफ आएगा नहीं, कितना भी प्रयास करो, कितना भी समझाओ, कितना भी सुनाओ, नहीं आएगा। तो यहाँ तमोगुण में अज्ञान जम, अज्ञान जम, जम का मतलब जन्म, जो पैदा ही अज्ञान से होता है, उसका जन्म ही अज्ञान से होता है। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। मोहनम सर्वदेही नाम, एक सर्वदेही नाम लिखने का मतलब सारे प्राणियों के ऊपर तमोगुण का प्रभाव है, क्योंकि इसके बाद नीचे लिखा हुआ है निद्रा, तमोगुण है निद्रा, तो सबको सोना तो पड़ता है ना, रोज का 6-6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक सबको सोना पड़ता है, और सोना तमोगुण की निशानी है, तो तमोगुण का प्रभाव तो सबके ऊपर है, कोई तमोगुण से बचा हुआ नहीं। अच्छा, ये तीन गुण ऐसा नहीं है कि एक ही गुण हमेशा किसी के ऊपर प्रभाव डालता है, ये तीनों गुण सारा दिन, कभी एक गुण का प्रभाव, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, ये हिलते रहते हैं। जैसे सुबह सवेरे सतोगुण का प्रभाव होता है, पुराने जमाने में संध्या काल में सतोगुण का प्रभाव है, उठते आदमी नहाता है, थोड़ा पूजा करता है, अगरबत्ती करता है, और फिर जैसे नाश्ता करके काम पे जाता है, एकदम रजोगुण आ जाता है, और रजोगुण ऐसा आ जाता है कि भागो दौड़ो, ये करो वो करो, ये जो, और वापस आके भोजन कर लिया, तमोगुण आया, सो गया। तो ये तीनों गुण सुबह से शाम तक हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। अब तीनों गुणों का प्रभाव जरूर रहेगा, अधिक समय सतोगुण में रहना, ये वृत्ति अगर आदमी बना के रखे तो बुद्धिमान कहलाएगा। प्रायः सतोगुण में आदमी कुछ मिनट ही दिन में रहता है। अब देखो, पहले भिखारी आते थे, अभी तो भिखारी आना बंद हो गए, नहीं तो वो सुबह सवेले शाम के टाइम आते हैं, संध्या काल में आते हैं। आदमी सतोगुण में होता है तो दोने की ऊंचा होती है, तो एक टाइम उनके आने का भी एक विशेष टाइम होता है, सारा दिन ऐसे भटकते वाले नहीं होते हैं। तो ये संध्या काल जो है सतोगुण का टाइम है, सुबह दोपहर शाम, तो इस टाइम पे आना चाहिए। मोह प्रमाद, प्रमाद पागलपन, प्रमाद कहते हैं पागल को, प्रमादी बड़ा पागल है। पागल का मतलब ये देख रहे हैं दुनिया में कि सब लोग मर रहे हैं फिर भी वही काम करने जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं, ये प्रमादी। प्रमादी का मतलब है कि हम लिखा एक उदाहरण ये लिखा है कि हमने देखा हमारा दादा हमारे सामने मर गया, चला गया, हमारे आंखों के सामने चला गया, हमने देखा कि नहीं, जो जन्म ले रहा है वो भी एक दिन जाएगा कि नहीं जाएगा, और फिर समझे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो ये प्रमाद, ये पागलपन हुआ कि नहीं हुआ। तो कम से कम दूसरों को दुख न पहुँचाए, परेशान तो न करे, दूसरों को भला न करे, तो दुखी तो न करे। जैसे आजकल बहुत से ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो स्वयं मूर्खता के कारण पूरे संसार को संकट में डाल के रखा हुआ है, देश को संकट में डाल के रखा है, ये इसको कहते हैं प्रमादी। प्रमादी का मतलब हठी है, अपनी बात करेगा और चाहे गलत है तो भी गलत में मैं इधर ठीक है यही करूँगा, ये प्रमादी है। आलस और आलसी, आलसी ऐसा कि बिल्कुल उठ के कुछ काम करना हो ये नहीं होगा, पड़ा रहेगा हमेशा, आलसी और निद्रा, और निद्रा में पड़ेगा, बंद 15 घंटे सोया हुआ है, 18 घंटे सोया हुआ है, बस पड़ा ऐसे भैंस की तरह पड़ा है, उठता ही नहीं है, ये तमोगुण का प्रभाव है। तन्निबाधनान्ति भारत, हे अर्जुन वो इन अवगुणों से बंध जाता है। तो ये तीन गुणों का सिर्फ आज इन तीन गुणों का प्रभाव क्या है ये लिखा है, ज्यादा सोता है, पागल की तरह जीता है, और नशाई लोग इस गुण के अंदर होते हैं और दूसरों को बहुत बड़ा दुखी करते हैं। तो आज मेरे ख्याल में अभी हमको तैयारी करनी चाहिए प्रकाश की, सतोगुण की तरफ जाना चाहिए, कल और गुणों का थोड़ा सा एक दो तीन इन गुणों का भावों को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे स्वभाव इससे बनता है, हमारा स्वभाव हमारा नेचर इन तीन गुणों से बनता है। तो हमको पता हो कि हम सतोगुण में ज़्यादा रहें तो हमारा स्वभाव सात्विक बनेगा, और सात्विक स्वभाव जो है वो ऊपर के स्तर का स्वभाव है, वो स्वभाव सुखवर्क में सुख प्रदान करने वाला है। चिंता था, रजोगुण चिंता वाला है, उसमें बहुत चिंताएं रहती है, चारों ओर से चिंता में घुरा। तमोगुण पागल है, उसको चिंता ही नहीं है, उसको चिंता भी नहीं है, वो है पागल लेकिन दूसरों के लिए चिंता का कारण है, वो उसको चिंता नहीं है लेकिन दूसरों के लिए वो बड़े से बड़ा चिंता का कारण है। तो सतोगुण में रहने के लिए प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके प्रचार से पहले कहा कि मैं लोगों को सतोगुण की शिक्षा देने के लिए आया हूँ, ताकि लोग कम से कम सुखी तो हो जाएं। हम दोनों लोगों को सुखी बनाने के लिए आए हैं, और सुखी बनाने के लिए सतोगुण में आने की आवश्यकता है। लोग रजोगुण के कारण बड़े चिंता में हैं और तमोगुण के कारण बहुत अपना अहित कर रहे हैं, पागलों की तरह पशु जीवन की तरह जी रहे हैं, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। तो सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बड़ा टेढ़ा।